Aquí.
Kota Farms. आर्म्स कहा जाता है शस्त्रों को, कोर्ट कहा जाता है न्यायालय को, तो हमारा भारत का न्यायालय ऊंचते ऊंच कौन सा है? ट्रिब्यूनल। और ट्रिब्यूनल में कौन बैठते हैं? कौन बैठते हैं? तीन मूर्तियां ही ट्रिब्यूनल है। इसलिए कोर्ट ऑफ आर्म्स होना चाहिए। अब हर न्यायालय में तो नहीं होंगी, तो न्यायालय में वो चित्र टंगा होना चाहिए कि दुनिया के बड़े से बड़े कानूनदा कौन है। ट्रिब्यूनल में चीफ जस्टिस भी होता है। तो हमारा कोर्ट ऑफ आर्म्स ब्रह्मा विष्णु शंकर का है। उन्होंने तीन जानवरों का दिखाई दिया है। वास्तव में वो तीन शेर भी नहीं है, उनमें एक है शेर, एक है घोड़ा, और एक है बकरी। हथियार हैं ज्ञान के, अस्त्र शस्त्र हैं।
बाबा सात शीतलाओं के साथ एक कुमार दिखाते हैं, वो किसका गाय है?
सात को शीतला क्यों कह दिया? शीतला माना शीतल रहने वाली। तो सात हैं या आठ हैं? देवताएं कितने हैं? आठ देवताएं हैं, तो देवियां कितनी होनी चाहिए? देवियां भी आठ, वो आठ होना चाहिए, परंतु उनमें सात हैं शीतलाएं और एक है शेरनी। शेरनी के साथ कौन होगा? शेर ही होगा। इसलिए एक शीतला अर्थात एक कुमारी सौ ब्राह्मणों से उत्तम कही जाती है। तो सात कुमारियां माना 700 ब्राह्मण हो गए, वो एक तरफ, और एक शेर एक तरफ, तो कितने के बराबर हो गया? 700 ब्राह्मणों के बराबर हो गया। इसलिए बोला कि कृष्ण के साथ कितनी पटरानियां थी? आठ पटरानियां थी। उनमें एक तो है आर्य समाजी से कनेक्टेड, वहां तो राजा ही नाम मात्र की है, बाकी रही सात।
वो एक का गायन हो चुका
क्या
कि जो कुमार सात सौ ब्राह्मण के बराबर है?
सात सौ ब्राह्मण एक तरफ, जो मालाएं बनेंगी उन मालाओं में मुखिया एक होगा और बाकी सब क्या होंगे? हैं? सौ की लिस्ट वाले होंगे। आठ सौ के साथ ऐड किए जाते हैं, अव्यक्तवाणी में बोला कैसे नहीं समझना है कि माला तो 108 की ही है, एक ही माला है, और भी मालाएं बना देंगे, बन जाएंगी। सतदल कहा जाता है किसको? किसको कहा जाता है? कमल के फूल को। तो जो कमल फूल समान पार्ट बजाते जाएंगे, भले दूसरे धर्म के बीज ही क्यों न हो, वो भी अपनी संपन्न स्टेज में आने पर सूर्यवंशी कहे जाएंगे। तो हर माला में एक मुखिया होगा, बाकी 99 सब सहयोगी हो गए। तो एक शीतला और बाकी सब सहयोगी, हर एक पटरानी के साथ एक पटराजा होगा। तो टोटल संख्या कितनी होगी फॉलोअर्स की? दो तो मुखिया हो गए और बाकी सब राज्य अधिकारी हुए। विश्व की बादशाही जब तैयार होगी तो 700 राज्य अधिकारी होंगे और एक राजा होगा।
आया समझ गए? इतना क्लियर
क्या बात क्लियर नहीं हुई?
वो 700 बन गए, 700 बन जाओ, 700 वाले जो होंगे वो उनका मुखिया वो साथ ही होंगे जो बाबा के ग्रुप के हैं।
बाबा के ग्रुप के नहीं, अंत में जाकर सबको सूर्यवंशी बनना है। इससे पहले अलग अलग राजाइयां दिखाई पड़ेंगी। हम उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं क्या? कलयुग द्वापर की ही सीढ़ी चढ़ते रहेंगे? एक मत में नहीं आवेंगे क्या? जब एक मत में आवेंगे तो सब एक के फॉलोअर बनेंगे या अलग अलग राजाएं होंगे? एक के फॉलोअर होंगे।
अब हम अभी उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, कलयुग से द्वापर, द्वापर से त्रेता। तो बाबा जब कलयुग द्वापर के आदि में पहुंचेंगे तो समय की पुरुषार्थ की निशानी क्या है?
द्वापर के आदि में कौन सा धर्म आता है? इस्लाम धर्म आता है। तो उस समय माया अपना फाइनल पेपर ले रही होगी कि नहीं? आखिरी बार करेगी। वैसे इब्राहिम आता है, तो 80% देवताएं फॉलोअर बन जाते हैं। जोर से कन्वर्शन होता है। और यहां तो माया किसी को छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि नंबर डिक्लेयर होने हैं। माया है सर्वशक्तिवान और बाप भी है सर्वशक्तिवान, बाकी सात का नंबर वार डब्बा गोल करेगी।
एक मुरली में है साकार व आकार, थोड़ा निराकार को भी याद नहीं करना है।
ठीक है,
इसका मतलब
निराकार माना ज्योति बिंदु। ज्योति बिंदु अगर शरीर में न आवे तो कोई काम का है? ज्योति बिंदु शिव है या ज्योति बिंदु आत्मा है? अगर शरीर न धारण करे तो कोई पुरुषार्थ कर सकेगी क्या? कोई काम संपन्न होगा? आत्मा अगर शरीर न धारण करे तो जैसे जड़बत। और दूसरे धर्म के धर्म पिताएं निराकार बिंदु को याद करते हैं या साकार देवता में याद करते हैं? हैं?
साकार देवता।
दूसरे धर्म के धर्म पिताएं साकार देवता में याद करते हैं, सब निराकार को याद करते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि जड़बत हो जाती है। और यहां भी भगवान को नहीं पहचान सकते, उनके फॉलोअर्स भी भगवान को नहीं पहचान सकते, उनके जो आधार मूर्त हैं वो भी भगवान को नहीं पहचान सकते। सात नारायण इसलिए बोला न निराकार को याद करना है और न साकार को याद करना है। जैसे बेसिक नॉलेज वालों ने किसको याद किया? किसको ज्यादा महत्व दिया? निराकार अर्थात निराकार की वाणी को महत्व दिया या साकार तन को महत्व दिया? साकार तन को महत्व दिया, उसी को याद किया। तो अंत मते सो गते, सब हार्ट फेल होते चले जा रहे, अकाले मौत होती चली जा रही। तो न साकार को याद करना है न आकारी को याद करना है। आकारी क्या होते हैं? आकारी तो फरिश्ता होते हैं। फर्श की दुनिया वालों से उनका कोई कनेक्शन ही नहीं जुड़ सकता। ताली एक हाथ से बजेगी या दूसरे दोनों हाथों से? दिल को दिल से राहत होती है। हम शिव बाबा को याद करेंगे तो शिव बाबा भी सर्व से उन बच्चों को याद करते हैं। तो दिल को दिल से राहत मिलती है। जो फरिश्ताएं हैं उनका फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता ही नहीं, तो उनसे हमको कुछ भी प्राप्ति नहीं होने वाली है। इसलिए गीता में भी लिखा है जो भूत प्रेतों को याद करने वाले हैं वो भूत प्रेत बनते हैं और भूत प्रेतों से प्राप्ति करते हैं। भूत प्रेतों की क्या प्राप्ति होगी? भूत प्रेत ही बनाएंगे, ठोकरें खाते फिरो। जो देवताओं को याद करते हैं वो देव ही उनमें जाते हैं। ब्रह्मा की वाणी जो गुलजार दादी में चलती है वो देव वाणी है या ईश्वरीय वाणी है? देव वाणी है। धारणा के पॉइंट्स ज्यादा बोलती है, सिखाती है। देवता क्या सिखावेगा? धारणा सिखावेगा, देवताई गुण सिखावेगा, ज्ञान की बात नहीं बतावेगा। जैसे कवि होते हैं या पुराने पुराने फिल्मी गीत हुए जो मुरली में बाबा ने उठाए हैं, बनाने वाले उसका अर्थ नहीं जानते। और सही अर्थ कौन बताता है? आकर बाप आकर बताते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा के द्वारा जो अव्यक्त वाणी है गुलजार दादी के द्वारा बोली जाती है, न ब्रह्मा उसका सही अर्थ समझता और न बेसिक की ब्राह्मणियां उसका सही अर्थ समझती। साक्षात्कार में जाने वाली संदेशियां संदेश लाती हैं। संदेश का अर्थ है उनकी बुद्धि में नहीं बैठता। जैसे ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए, साक्षात्कारों का अर्थ उन्होंने नहीं समझा, बाप ने ही आकर के समझाया। ऐसे ही ब्रह्मा की सोल सिर्फ दैवी गुण सिखाती है, बाप की पहचान नहीं दे सकती। अगर बाप की पहचान दे तो गीता का भगवान कौन है वो भी पहचान ले। गीता का भगवान कौन ये कृष्ण की आत्मा अभी भी नहीं समझती। जिस क्षण ये पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगा उसी क्षण ब्रह्मा सो विष्णु बन जाएगा। इसलिए बोला कि न निराकार को याद करना है न साकार को याद करना है और न आकार को याद करना है। किसको याद करना है फिर? साकार में निराकार को याद करना है। और
उसी में है चित्रों में बनाया हुआ शिव को भी याद नहीं करना। तो ये भाव
माने चित्रों में जो चित्रण किया है वो तो कवि का चित्र, जो क्या नाम चित्रकार का चित्र है ना, कलाकार का बनाया हुआ चित्र है। कलाकार जो उड़ान भरता है उसकी उड़ान लाक्षणिक होती है, प्रतीकात्मक चित्रण होता है। उस चित्र के अर्थ को या तो बनाने वाले जानते थे, जैसे शास्त्रों का जो असली अर्थ है, द्वापर के आदि में शास्त्रों में फिर भी सच्चाई थी, वो शास्त्र लिखने वाले अभी नहीं रहे, तो भगवान बाप को ही आकर के सच्चा अर्थ बताना पड़ता है। ऐसे ही जो शंकर का चित्र चित्रकार ने बनाया है जरूर द्वापर के आदि में बनाया है, पहले चित्र बने या पहले शास्त्र बने? पहले चित्रों का चित्रण हुआ, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कनेरी आदि गुफाओं में। बाद में उन चित्रों को देख करके, उस कलाकारी की भावना को देख करके शास्त्र बनाना शुरू हुआ। कौन बनाया? मनुष्य नहीं बनाया, और किसने बनाया है? अपनी अपनी कथा कहानियां अपने अपने शास्त्रों में लिख दी है, तो अपने अपने चित्र कौन बना देगा? तो चित्रों का जो चित्रण करने वाले हैं, उन्होंने प्रतीकात्मक भाषा में, लाक्षणिक भाषा में, अलंकारिक रूप में वो अलंकारिक चित्र तैयार किए हैं। ऐसे नहीं कि गले में और कमर में और भुजाओं में सांप वाला कोई आदमी होता है, उसका स्थूल अर्थ नहीं उठाना चाहिए। तो शंकर का या कोई भी देवता का वो लाक्षणिक चित्र नहीं होना चाहिए, एक्यूरेट चित्र बनाना चाहिए। एक्यूरेट चित्र क्या होगा? सांप दिखाएंगे, जटाजूट दिखाएंगे, सर के ऊपर कन्या बैठी हुई दिखाएंगे, कन्या का सर काट के लगाएंगे क्या? ये तो कलाकार का चित्रण है। वो चित्र समझाने के लिए आर्टिफिशियल बनाया गया। तीसरा नेत्र क्यों लगाया गया? ये बात समझाने के लिए लगाया गया कि सदाशिव उसमें प्रवेश करता है। और समझ में आया? हाँ जी।
राम धोनी का आदि में
है?
राम जो धोनी का आदि में फिल हुआ।
हाँ जी।
तो उसको कृपया में भेज दिया
है,
कृपया में भेज जाना फिल हुआ बोलिए।
कहाँ जानो?
त्रेता।
त्रेता में भेज
फिल हुआ तो त्रेता में।
त्रेता रावण तो वही तो नेता किसका साथ युद्ध किया
है?
ये तो कृपया में रावण नेता किसका साथ युद्ध किया?
क्या
कहें? रावण वहाँ त्रेता में था ही नहीं, तो लड़ाई किसके साथ?
कृष्ण के बारे में नहीं।
माया रावण वहाँ नहीं था? वहाँ माया रावण नहीं था क्या यज्ञ के आदि में? माया रावण अगर न होता तो फिर राम हारता ही क्यों? फेल ही क्यों होता? फेल होने का कारण ही ये हुआ कि माया रावण के चंबे में था राम, लेकिन जो भगवान की वाणी है उसका अर्थ क्लियर नहीं हुआ। जो गीता ज्ञान है वो संपन्न स्टेज में नहीं आया। अगर पूरा ज्ञान होता, राम के बुद्ध रूपी तरकस में पूरे बाण भरे हुए होते, तो रावण उसको उस समय भी हरा नहीं सकता था। उल्टी चाड़ी चढ़ेंगे तो पहले त्रेता युग में पहुंचेंगे या सीधे सतयुग में पहुंच जाएंगे? हाँ हाँ, जो तीव्र पुरुषार्थी होगा वो कलयुग, द्वापर, त्रेता तीनों से पसार कर सकता है या नहीं? जैसे अभिमन्यु के लिए दिखाते हैं, एक अभिमन्यु की बात है क्या? एक की बात है, अनेकों की बात है कि वो सारे चक्रों को भेदन करता गया, आखिरी चक्र में जाके फंस गया, बाहर नहीं निकल सका। तो ऐसे ही राम की आत्मा के लिए भी ये लागू होता है। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। वो अभिमान रखने वाले अभिमन्यु का भी पार्ट है। यज्ञ के आदि में पूरी पढ़ाई हुई नहीं और माया से लड़ाई हो गई, तो हारना तो था ही।
हनुमान का भी पार्ट वही होगा बचपन का, हनुमान का भी बचपन का भी पार्ट उसी का होगा। जन्म लेते ही उसने सूर्य को निकालना चाहते, इसलिए सूर्य जब ने
सूर्य को उसने नहीं निकला, राम की आत्मा ने, ब्रह्मा की आत्मा हनुमान का पाठ धारण करने वाली हुई और उसने ज्ञान सूर्य को हत्या कर लिया। ज्ञान सूर्य राम का नाम निशान मिट गया, सारा ही ब्राह्मण परिवार अज्ञान अंधेरे में आ गया। यज्ञ के आदि से लेकर के 76 तक
का
माने विपरीत, अकुंठ माने कुंठा, जहां कोई कुंठित नहीं होता, हरासमेंट में नहीं आता, सब आत्मिक स्थिति की उमंग उत्साह में रहते हैं, आत्मिक स्थिति की शान में रहते हैं, इसलिए उसका नाम वैकुंठ है।
थोड़ा समय
माना
संगम
आत्मिक स्थिति वाला, ढाई हजार साल के लिए आत्मिक स्थिति वाला बनाई देते हैं। आत्मिक स्थिति वाला जो स्वर्ग कहा जाता है, क्यों कहा जाता है स्वर्ग, स्वस्थिति में जाते हैं तो देवता कहे जाते हैं। कलाएं भले कमती होती जाए, सूर्य में तो कलाएं नहीं होती हैं, और सूर्य तो संगम युग में ही होता है या सत्ययुग और त्रेता में भी होना चाहिए। सन 36 तक ही सूर्य कहा जाएगा ना, और सूर्य को कलाओं में बांधा नहीं जाता है, और कृष्ण की आत्मा कला में बांधी जाती है, तो सन 36 के बाद सात की कलाएं उतरने लगती है। जिनकी कलाएं उतरने लगे उनको सूर्यवंशी कहा जाएगा, फिर क्या, चलो सूर्यवंशी कहा भी जाए क्योंकि वो तो वंश है, लेकिन सूर्य तो नहीं कहा जा सकता।
सरकार सृष्टि पर एक ही सदा
कायम सीधा लाई,
इसी के लिए कहा
जी, आदि से लेकर के और अंतिम जन्म तक, जब तक वो पूरा नास्तिक न हो जाए तब तक, और जैसे ही पूरा नास्तिक होता है और ज्ञान सूर्य उसमें प्रवेश कर जाता है।
मैं एक मुरली में आया, मैं प्रथम चक्रधारी हूँ, पर प्रैक्टिकल मैं 84 जन्म में नहीं हूँ।
स्व का दर्शन क्या करेगा शिव, शिव स्व का चक्र क्या घुमाएगा, वो तो असोचता है, उसको सोचने करने की, मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है। अगर दरकार है तो वो त्रिकालदर्शी नहीं है, ऊपर वाला है अंतर्यामी और नीचे वाला है बहिर्यामी, तो ये बात लागू नहीं होती। और
ज्ञान नहीं था तो वो कैसे
जो पवित्र आत्मा होगी वो पवित्रता की पावर से जब एडवांस नॉलेज मिलेगी तो औरों के मुकाबले जास्ती आगे जाएगी या कम आगे जावेगी? जास्ती आगे जावेगी। और विष्णु चरित्र चतुर्भुज का जो अलंकार है वो संपन्न स्टेज का है या अधूरी स्टेज का है? संपन्न स्टेज का है, इसलिए दिखा है। छोटी मम्मी के तन में
वो जो सौंग ध्वनि दिखाया गया है तो वो शंख ध्वनि।
हाँ,
वो तो
शंख ध्वनि क्या करेगा जब खुद ही बुद्धि में बात नहीं बैठेगी? दूसरों को ज्ञान तो तब सुनाने की बात है जब पहले खुद समझे और फिर दूसरों को सुनाए। प्रवेश करने वाली आत्मा और जिसका शरीर है वो आत्मा, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? दोनों ही आत्मा है, एक प्रवेश करने वाली है और एक के शरीर में प्रवेश होता है। शरीरधारी वो इसी जन्म में लक्ष्य को प्राप्त करता है, नारी से लक्ष्मी बनता है। जो बाप का दिया हुआ लक्ष्य है उस लक्ष्य को जो प्राप्त करे वो श्रेष्ठ, या जो लक्ष्य को प्राप्त ही न कर पाए वो श्रेष्ठ, प्राप्त करने वाला ज्यादा श्रेष्ठ। हाँ जी, दोनों एक दूसरे में अनिश्चित होकर के पार्ट बजाते हैं।
हाँ।
शंकर में गदा कैसे चलेगा?
हाँ,
तो
अरे उनका गदा शंकर में कैसे चलेगा? गदा जो है वो धार वाला होता है क्या, कि तलवार धार वाली होती है या बाण धार वाला होता है? ज्यादा तीखा कौन सा होता है? तलवार और बाण ज्यादा तीखा होता है। जिनकी ठर्र बुद्धि होती है वो गदा चलाते हैं। हनुमान को क्या दिखाया है? गदा। भीम को गदा दिखाया है। अर्जुन को क्या दिखाए हैं? बाण दिखाए हैं। वो भगवान के दिए हुए बाण धारण करता है। भगवान गदा नहीं देता है। क्या देता है? ज्ञान के बाण देता है। जो बाण है वो तीखे में तीखे नुकीले होते हैं। तो राम वाली आत्मा में गदा क्या काम करेगा? और वो तो खुद ही अधूरा चंद्रमा है। बीज रूप आत्मा में प्रवेश करते ही वो बीज रूप आत्मा बन जाती है। कौन? ब्रह्मा वाली सोल। संग का रंग लग जाता है, गदा बदा सब भूल जाता है। औरों के शरीर में प्रवेश करके पाट बजाते होंगे गदा का।
तो फिर भी राम वाली आत्मा को बताया गया कि भयंकर पाट बजाती है शिक्षक जैसे आत्माओं से कन्या माताओं को बचाने के लिए। शिक्षक जैसे आत्माओं
वो तो बता दिया, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तू युधिष्ठिर भी है, तू भीम भी है, तू अर्जुन भी है, तू नकुल भी है, तू सहदेव, जब है ही सारी सृष्टि का बीज।
बाबा मुरली ने बताया कि मैं ऐसा जादूगर हूँ जो कन्या को माता बना देता हूँ और माताओं को कन्या बना देता हूँ। तो बाबा भाइयों को क्या बना?
भाइयों को दुर्योधन दुशासन बना देता हूँ। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तो धर्मराज कौन हुआ पहला पहला? अगर ये एडवांस ज्ञान न निकले तो धर्मराज की बात आवेगी? आवेगी नहीं। एक बात पूरी हो जाएंगे। हाँ, क्या बात?
यदि वो धर्मराज की बात हो जाएंगे तो उनका तो ग्लानी हो जाएगा, तो सत्यनारायण के
किसका ग्लानी हो जाएगा? धर्मराज का पाठ ग्लानी वाला होता है? है? चंडाल का पाठ ग्लानी का होता है या धर्मराज का पाठ ग्लानी का होता है? अष्टदेवों में धर्मराज को दिखाते हैं या नहीं? है? दिखाते हैं। यमराज भी अष्टदेवों में से एक है, तो ग्लानी वाला पार्ट है क्या?
कौन?
जो सत्यनारायण बन जाते हैं तो सत्यनारायण बनने के बाद धर्मराज का पार्ट बजाते हैं या उससे पहले बजाते हैं? धर्मराज का काम है दूध को दूध और पानी को पानी करना। तो रिजल्ट आउट होगा माना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रिजल्ट आउट होने के बाद धर्मराज का पार्ट रह जाएगा। अब पीछे वालों को भी बोलने दो, तुम तो कथा कहानियां शुरू कर दी। हाँ बोलो। ठीक है। ज्ञान माना ज्ञान, ज्ञान उसको कहते हैं जो हर तरीके से हर स्थिति में हर वातावरण में हर व्यक्तियों के बीच में अपने को एडजस्ट करके दिखावे। अगर माताएं ये भूल जाती हैं कि भगवान बाप का तो हम अभी बने हैं, मन बुद्धि से बने हैं या तन से बने हैं? मन बुद्धि से बने हैं, तो बैलेंस रखना चाहिए ना। बैलेंस को भूल जाना, जानबूझ करके ऐसी एक्ट नहीं करती जिससे पति का अपमान हो जाए, लेकिन भावना में आकर के ऐसा काम करती है जिससे वो अपमान महसूस करता है कि हमारा ध्यान नहीं देती, अपने भाव में बही चली जा रही है।
तो उस सब की जोगिनिया गायब हुई है, तो उस सब मैंने 64 तो उसका चार धर्म का जो 8-8 है, तो अब तो ये युगल भी होंगे और ये भी होंगे।
चार धर्म का 8-8 8 को तो 32 ही हुए
ना। मुखिया भी होते हैं ना, चार धर्म का मुखिया 8-8 होते हैं, तो 8 से 32 हुए। अतः उन लोग का भी सहजगिनी 8 होंगे ना।
हो
तो चार का लिया गया, मतलब चार मुख्य धर्म होने के कारण
योगी और योगिनी बनती कब है और बनाता कौन है? योगिनी और जोगी कौन बनाता है और भोगी कौन बनाते हैं? अनेक मनुष्य गुरु बनाते हैं भोगी, और एक बनाता है योगी और योगिनी। अब आगे बोलो।
जो आठ आठ जो होते हैं,
हाँ जी,
हर धर्म का, तो उन लोग का योगिनी भी है, आठ है, तो मिला के 16 हुआ है, 16 तो 32 64 यही गाया जाता है। तो चार धर्म मुख्य होने के नाते 64 जो गाया जाता है।
तो तुम्हारी अपनी रचना है, आठ मुख्य धर्म है, तो आठ मुख्य धर्मों में उनके अपने अपने आठ भी होंगे ग्रुप, तो 64 होना चाहिए या 32 होना चाहिए? इस हिसाब से चार धर्मों की बात नहीं है, लेकिन वो सब बनाने वाला एक ही है। पहले सूर्यवंश को डिक्लेयर करता है, फिर चंद्रवंश का नंबर लगता है, वहां भी उनके पुरुषार्थ के अनुसार बनाने वाला एक ही है। ऐसे ही इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन आदि आदि।
जोर से बोलिए। आज के बाणी में जबलपुर का ओम प्रकाश आया।
हाँ जी, हाँ जी। ओम माने क्या? ओम का प्रकाश माने क्या? आत्मा का प्रकाश। और जबलपुर का ओम प्रकाश, जबल माना जबर, बहुत जबरदस्त आदमी है। तो और तो घर होते ही है, साधारण होते हैं, सामान्य घर होते हैं, या सामान्य पुर होते हैं जहां लोग निवास करते हैं। लेकिन जबलपुर कौन सा है जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है? हाँ, तो वो भी ठीक है, जो भगवान को भी अपनी ओर आकर्षित कर ले और सारी दुनिया जिसकी ओर आकर्षित हो जाए। लेकिन वास्तव में सारी दुनिया में जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो जबलपुर की ओर आकर्षित होती है, या उसमें प्रवेश हुई आत्मा की ओर आकर्षित होती है? और धर्मवंश की आत्मा भले उसकी ओर आकर्षित होती हो, देहदारी की ओर, राम और कृष्ण की ओर, लेकिन सूर्यवंशी आत्माएं सिवाय शिव के और कोई की ओर आकर्षित होने वाली नहीं है। ऐसे नहीं राम और शंकर की ओर आकर्षित हो जाए, लेकिन यह बात हो रही है आत्मा राम की। कहां का आत्मा राम है? जबलपुर का। तो सबसे जबरदस्त पुर कौन सा है? जहां सबको खींच करके वापस जाना पड़ता है, है परम धाम। परम धाम में आगे आगे कौन सी आत्मा जाएगी? परमात्मा की बात नहीं हो रही है, परमपिता की बात नहीं हो रही है, आत्मा की बात हो रही है। कौन सी आत्मा पहले जाएगी? है राम वाली आत्मा। तो आत्म प्रकाश हो गया। आत्मा का प्रकाश फेंकने वाला आप वो चाहे जबलपुर का आत्म प्रकाश कहो, हाँ
बाबा, बच्चों को कुमार हो या कुमारी उनको कितने क्लास तक अपने पैसे से पढ़ाना
है? आजकल तो प्राइमरी स्कूल में जाते ही यार प्यार सीख जाते हैं, सिनेमा और टीवी उनको सब सिखाई देता है। तो कौन से क्लास तक पढ़ाना चाहिए है? है? अभी तो बताया प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे यार प्यार नहीं कर लेते हैं आपस में, दागली पढ़ाई माने दागली पढ़ाई, चाहे प्राइमरी स्कूल की हो चाहे ऊंची वाली हो। ये है प्राइमरी स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं तो माँ बाप के कंट्रोल में रहते हैं, ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं तो बड़े हो जाते हैं, नाबालिग की जगह बालिग हो जाते हैं। वो अगर लव मैरिज करेंगे भी तो माँ बाप कुछ नहीं कर सकते, और जो नाबालिग है वो अगर लव मैरिज करेंगे तो पुलिस से उनको पकड़वाया जा सकता है। और बरगलाने वाले को जेल में डाला जा सकता है। इसलिए दागली पढ़ाई तो दागली पढ़ाई है।
और एक छोटा प्रश्न है, हाँ। आया है इन ब्रह्मा को याद नहीं करना है, इन ब्रह्मा का फोटो भी रखना नहीं चाहिए, तो उन ब्रह्मा का रख सकता है?
इन एक वचन है या बहुवचन है? तो एक के लिए बोला या सभी ब्रह्मा के लिए बोला?
तो प्रजापिता ब्रह्मा कैसे रख सकता है ना?
ब्रह्मा नहीं बोलता। जो बोलने वाला है वो किसके द्वारा बोलता है?
ब्रह्मा द्वारा ही
है? हाँ, ब्रह्मा के द्वारा तो बोलता है, लेकिन इन जब कहा तो किसकी तरफ इशारा होगा? ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है, ये नहीं कहा प्रजापिता ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है, कहा
नहीं कहा तो रख सकते हैं।
प्रजापिता ब्रह्मा का चित्र है तब तक नहीं रख सकते जब तक वो लिख करके स्वीकार न कर ले कि तुम मेरे बच्चे हो, और वो तब तक लिख कर देने वाला नहीं है जब तक फाइनल पेपर न हो जाए। और
बाबा, एक एडवांस के लिटरेचर में आया था कि विश्व महाराजन और महारानी बनने की निशानी है कि जो ये आत्माएं माता कन्या को बहुत दीदार की दृष्टि में देखते होंगे, उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो। तो भाइयों को तो दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में बाबा ने डाल दिया,
तो भाई जो है
डाल दिया थे नहीं। आपका मंतव्य ये है कि बाबा ने डाल दिया गड्ढे में, हमारी ग्लानिंग कर दी, लेकिन हम थे नहीं है।
संख्या रंग में बाबा आते हैं,
तो बाबा ने तो नहीं डाल दिया, 63 जन्म ग्लानी करते करते नहीं चूके।
तो बाबा वो देवता तब तक नहीं बन सकते जब तक माता को आगे नहीं रखेंगे, तो बाबा माताएं की लिस्ट में कन्या भी आ जाते हैं और माता भी आ जाते हैं,
ठीक है?
तो जैसे पता चले
क्या
कि माताएं जो है वो बाबा के वो और उन माता कन्या को ही डाल देंगे जो बाबा के सीमन पर चलते हैं, और जो नरक की बात बोलते बैठे हैं उनको तो मतलब डिस्ट्रिकार्ड भी नहीं करेंगे या उनको देखेंगे नहीं।
तो उनको नरक के द्वार में डालने वाला कौन?
और निशानी क्या, कैसे पता चलेगा कि
माताएं तो कोई भी हो, उनका पोता मेल हम जानते हैं क्या? एक एक हम बच्चे हर माता का पोता मेल जानते हैं कि कौन सूपन कहाँ है, कौन कूतन है।
ड्राइविंग गुण बाहर से दिखाई पड़ता है तो वैसे तो आखिरी गुण भी दिखाई पड़ता है। अब ड्राइविंग गुण तो वही देख पाएंगे जो ज्ञान में बड़े दिखे फर्क से जिनमें ज्यादा होंगे।
हमें तो हर कन्या माता को रिगार्ड देना है क्योंकि इसे कलयुग की दुनिया में सब अबलाएं हो जाती है या शिव की शक्तियां हैं, सब अबलाएं बन जाती है। हम जिस दृष्टि से देखेंगे वैसा हमारा वाइब्रेशन हमको भी परिवर्तित करेगा और उनको भी परिवर्तित करेगा। और
पिछले आकाशवाणी में आया कि तुम बच्चों को बाबा ने सत्या आकाशवाणी में आया कि तुम बच्चों को खजाना दिया है, गुना का खजाना, सत्यों का खजाना और ज्ञान का खजाना। तो उसमें एक खजाना है जो श्रेष्ठ के समय का खजाना, समय को तो बाबा जो भाई या बहने जो सरेंडर है उनको तो बाबा ने निमित्त बनाया हुआ है, सभी की हुई है और समय को सफल जो बाहर रहते हैं वो कैसे सफल करे बाबा? जब सेवा नहीं मिलती है कि सेवा का चांस नहीं मिलता है तो जब बाबा
तो बाबा ने ये नहीं कह दिया तुम्हारा सब परिवार पूरे परिवार वाले ज्ञान में चलेंगे? तो परिवार के भांति नहीं है वो, गीता पाठशाला के सदस्य नहीं है, उनकी सेवा नहीं कर सकते?
सेवा को सुनना भी नहीं चाहते
हैं, नहीं सुनना चाहते तो क्या कर्मों से सेवा नहीं होती है? मुख का भाषण करने से ही सेवा होती है क्या? प्रैक्टिकल एक्ट से सेवा नहीं होती क्या?
जब उसमें मूर्ति सुनेंगे या बीसीडी सुनेंगे या वास्तव सुनेंगे जो समय करता है उसको भी समय को सफल किया बोल के कहा जाए?
जब मुरली पढ़ते हैं या मुरली सुनते हैं या बीसीडी देखते हैं उस समय पाप कर्म नहीं बनते हैं, नहीं तो पाप कर्म बनते ही रहते हैं। इसलिए समय का सदुपयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ फिर भी सदुपयोग कहेंगे।
तो बाबा जो पाप कर्म जो बनते संकल्प में जो संकल्प विकल्प करते वही उसको पाप कहते हैं या कर्म से जो पाप होते हैं?
कर्म से जो पाप बनता है उसका सौ गुना दंड तुरंत चढ़ जाता है।
संकल्प में जो वाइब्रेशन के आधार पर जो आ जाते हैं कुछ गलत वाइब्रेशन
तो काट दो
तो उसमें पाप बाबा करते हैं, अगर उसको विस्तार में लाए तो वो पाप चढ़ जाएगा, अगर उसको उसी समय काट दिया तो उसमें पाप चढ़ेगा?
अब एक सेकंड, दो सेकंड, चार सेकंड टाइम तो है ना, जितना पालना की उतना तो चढ़ेगा। और ये जो ज्ञान रत्न बाप देते हैं वो ज्ञान रत्नों का दुरुपयोग उड़ीसा में सबसे जास्ती हुआ एडवांस नॉलेज में या दूसरे स्टेट में हुआ है? बिहार में तो एक दो कन्या गड्ढे में गई और यहाँ तो डेढ़ कन्या गड्ढे में चली गई और सबके वाइब्रेशन जो सरेंडर हुए पड़े हैं उनके भी वाइब्रेशन बिगाड़ के रखे हुए हैं। राजयोग सिखाना है, राजयोग सीखेंगे।
हैं? माता लोग अपने बच्चे को भेज देते
हैं। जब खाने को नहीं होगा कुछ भी तो क्या करेंगे? जिसको ज्ञान दिया है उसी को उसी का कल्याण कर देंगे, काट देंगे? अरे काट देना माने उसको विकारों में ढकेल देना।
बाबा जो याद में जितना टाइम योग में बैठ चुके हैं उतना टाइम याद में जो दिन भर काम करते हुए चलते हैं जो याद।
ये तो अपनी प्रैक्टिस की बात है, किसी ने ऐसी प्रैक्टिस डाल रही कि सुबह से शाम तक काम करते उसको लगातार याद आती रहती है। तो ये बैठ करके चार चार आठ आठ घंटे बैठते हैं बिल्कुल याद नहीं आती, बुद्धि ठहरती नहीं।
चलते फिरते जो याद रहता है बैठने से याद नहीं आता, तो बैठ के याद करना चाहिए।
बैठ के याद करने का मतलब है हमने सारी ताकत याद में लगा दी, और कर्म करते हैं याद करने का मतलब है कि हम दुनियावी कर्म भी कर रहे हैं और साथ साथ बाप को याद भी कर रहे हैं। लेकिन ये याद उसको आएगी जिसका ओरिजिनल प्यार होगा बाप के साथ, कहीं और कहीं बुद्धि अटकी होगी, तन अटका होगा तो याद नहीं आएगी। कर्म करते कर्मयोगी नहीं बन सकता। कर्मयोगी बैठ करके याद करते हैं वो हठ योगी है या कर्म योगी है?
याद नहीं आता,
कोई जरूरी नहीं काम नाम करते ही याद आता हो, और कोई जरूरी नहीं बैठ करके ही याद आता हो।
मृत्यु गणा तो
हाँ जी
राम वाली आत्मा तो चंद्र कला वाली आत्मा है।
चौदह कला वाली आत्मा है? है ये कौन सी मुरली में कहा चौदह कले वाली आत्मा है? राम फेल हुआ तो चौदह कला में चला गया, हाँ चौदह कला में चला गया। राम फेल हो गया, सोलह कला संपूर्ण नहीं बन सका। तो जिस समय राम फेल हुआ वो फाइनल पेपर में फेल हुआ या छोटे पेपर में फेल हुआ? है छोटे पेपर में फेल हुआ, तो आगे चल करके फाइनल पेपर में पास हो सकता है या नहीं? है हो सकता है। हाँ फिर आगे हाँ जी समाधान हो गया।
अमृत वेला जो बैठना
माने दो बजे तीन बजे दुनिया में कारखाने नहीं चलते हैं क्या? कर्म करते हैं कि नहीं करते हैं? तो घर परिवार के सारे कर्म निपटा लिए क्या? सवेरे को काम कोई काम नहीं हो सकता? काम हो सकता है कि नहीं है? हो सकता है, बल्कि और ही नींद उड़ जाएगी। बैठ करके याद करेंगे, सिर्फ याद करेंगे तो हो सकता है नींद का झोंका आ जाए, आ जाता है। जागने की प्रैक्टिस करनी है तो कर्मयोगी बनना चाहिए। है पहला वैश्य हाँ जी
इब्राहिम की आत्मा पहला प्रवेश करता है पहले राम वाली आत्मा?
पहले वैश्य राम वाली आत्मा बनती है। इब्राहिम वाली आत्मा तो प्रवेश करके व्यभिचारी बनाती है, बाइबल में और कुरान मुसलमानों के ग्रंथों में वो कथा आई है फॉर एडम ईव जन्नत में भेजे गए, उनको आन दी गई कि बाड़ी का फल नहीं खाना, गंदम नहीं खाना, और उन्होंने गंदम खा लिया। ईव के बहकावे में आकर। तो पहले इब्राहिम वो अपनी एक्ट शुरू करता है या राम वाली आत्मा पहले विशेष बनती है? राम वाली आत्मा विशेष बनती है, वैश्यों में सबसे पहला वैश्य। क्या होता है जो संबत वगैरह होते हैं उनका कैलकुलेशन सतयुग त्रेता में होता है या और युगों में होता है? संबत का जो कैलकुलेशन होता है वो द्वापर कलयुग में होता है, संगम युग में होता है या सतयुग त्रेता में होता है? द्वापर कलयुग और संगम युग में कैलकुलेशन होता है। 1936 के बाद कोई भी कैलकुलेशन करने की दरकार नहीं।